शारदा जी की बात सुनकर अरुणिमा की आंखें हैरानी बड़ी हो जाती है और वो असमंजस में अपनी माँ को देखते हुए कहती है, माँ तुम ये क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। शारदा जी ने चिल्लाते हुए कहा, तेरा चेहरा जब भी देखती हूँ तो मुझे उस घटिया इंसान की याद आती है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तो उसका गंदा खून है तो मेरी मिश्री को भी अपनी तरह ही बना देगी। मेरी मिश्री मेरे और मेरे अभय के प्यार की निशानी है, वो तेरी तरह किसी का गंदा खून नहीं है, तो मेरी मिश्री से दूर रहना। अरुणिमा के आंसू तेज हो गए थे। उसकी जिंदगी में दुख क्या वैसे ही कम थे जो शारदा जी उसके सामने उसे किसी का गंदा खून बता रही हैं। अरुणिमा से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी माँ के पास आती है और सामने खड़े होते हुए कहती है, माँ तुम क्या कहे जा रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे और मिश्री के पिता तो एक ही है ना। शारदा जी अपने गुस्से में इतनी अंधी हो गई थीं कि उन्होंने अस्पताल स्टाफ को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और अगले ही पल अरुणिमा की गर्दन पकड़ ली। वो अरुणिमा की गर्दन को अपने हाथों से दबाते हुए उसकी जान लेने की पूरी कोशिश कर रही थी। और इस बीच शारदा जी के एक्सप्रेशन कभी खतरनाक हो रहे थे तो कभी वो हंस रही थी, कभी रो रही थी तो कभी कुछ और ही कर रही थी। उनके चेहरे पर पल पल भाव बदल रहे थे। अरुणिमा का गला घुट रहा था। शारदा जी अरुणिमा के गले पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गुस्से में उसकी आंखों में देखकर कहती है, तू मेरे बच्चे को मुझसे दूर ले जाएगी, कमीनी तू भी अपने बाप की तरह ही निकली ना, जैसे तेरे बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी अब तू मेरी मिश्री की जिंदगी बर्बाद कर रही है, मैं तुझे जान से मार दूंगी। मारना तो तुझे मैं पहले भी चाहती थी लेकिन अभय ने मुझे तुझे मारने नहीं दिया, उसने कहा कि मैं तुझे संभाल कर रखूं और जब तू बड़ी हो जाए तो तेरे इस चेहरे से फायदा उठाऊं। अरे मैं तो तुझे किसी कोठी पर भेज देती, पर तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे किसी के घर की बहू बनने का मौका मिला है, वरना अब तक किसी की रखेल बन गई होती। शारदा जी का एक एक शब्द ऐसा लग रहा था जैसे अरुणिमा के शरीर का हर एक हिस्सा काटकर उसके जिस्म से अलग कर रहा है। मैंने इतने साल तेरा बड़े होने का इंतजार किया था ताकि तुझे बेचकर एक अच्छी खासी कीमत वसूल सकूं, पर जैसे तेरे बाप ने मुझे बर्बाद कर दिया था वैसे तेरा पति अब मुझे बर्बाद कर रहा है, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे भिखारी बनाकर रख दिया था। मैं अपनी बर्बादी का बदला तेरे पति से जरूर लूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तेरे बाप से लिया था। वो कमीना मरने को तैयार नहीं था, उसका भी गला मैंने ऐसे ही खोटा था तब तक जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। सांस लेने के लिए तड़प रहा था ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं भी उसके नीचे ऐसे ही तड़प करती थी, पर मुझ पर रहम नहीं दिखाता था, वो मेरे शरीर को किसी कुत्ते की तरह नोचता था, इसीलिए मैंने उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद कर दी। पर फिर आया तेरा पति मुझे बर्बाद करने के लिए, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैंने इस पूरी दुनिया के सामने एक अच्छाई का मुखौटा पहन के रखा हुआ था और तेरे पति ने मेरे चेहरे से उस मुखौटे को ही हटा दिया है। मैं ना तुझे छोड़ूंगी ना तेरे उसे कमीने पति को छोड़ूंगी, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी जैसे मैंने तेरे बाप को मारा था और जैसे मैंने तेरे पति की माँ को मारा था। शारदा जी की बात को सुनकर अरुणिमा एकदम से निश्शब्द रह जाती है। अब उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका गला कितनी कसके दबाया जा रहा था, बल्कि उसके कानों में पड़ रहे शारदा जी के शब्दों ने ही उसकी जान निकाल रखी थी। अस्पताल स्टाफ जल्दी से डॉक्टर को लेकर आते हैं और डॉक्टर जब सामने की स्थिति देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो जल्दी से इंजेक्शन निकालकर शारदा जी के हाथों में लगा देते हैं जिससे थोड़ी ही देर में शारदा जी का चेहरा झूमने लगता है और वो बेहोश होने लगती हैं। उन्हें बेहोश होता देख मिश्री और अरुणिमा दोनों हैरान हो जाती हैं, पर अस्पताल स्टाफ ने उन्हें संभाल लिया था। अस्पताल स्टाफ शारदा जी को धीरे धीरे वार्ड की तरफ खींचते हुए ले जा रहा था। अरुणिमा हैरानी से उन्हें जाता हुआ देख रही थी और वो अभी भी अपनी वास्तविक दुनिया में नहीं थी। डॉक्टर ने अरुणिमा की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी मैडम, दरअसल पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनसे तब तक मिलने ना आए जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। डॉक्टर वहां से चले गए। अब कॉरिडोर में सिर्फ मिश्री और अरुणिमा ही थे। मिश्री अरुणिमा का हाथ खींचते हुए कहती है, दीदी ये माँ क्या कह रही थी, वो किसके बारे में बात कर रही थी, कौन है ये अभय, हमने तो कभी किसी अभय का नाम नहीं सुना है, फिर माँ ये क्यों कह रही थी कि मैं अभय की बेटी हूँ, क्या आपके और मेरे पिता एक नहीं है। अरुणिमा ने जल्दी से मिश्री को गले लगाया और कहा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम दोनों के पिता एक ही हैं, मुझे पता है जब तुम पैदा हुई थी तो मैं वहीं पर थी, तुम्हें सबसे पहले मेरी गोद में ही तो रखा गया था और नर्स ने मुझे बताया था कि मेरी छोटी बहन आई है, तुम मेरी ही बहन हो। माँ की बातों को ज्यादा दिल से मत लगाओ, देखा नहीं डॉक्टर ने अभी क्या कहा, उन्होंने कहा माँ बीमार है इसीलिए वो कुछ भी बोल रही है, तुम उनकी बातों को अपने दिल से मत लगाओ, देखना माँ जब ठीक हो जाएगी तो उन्हें याद भी नहीं होगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है, ये सब वो अपनी बीमारी की वजह से कह रही हैं। माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी मिश्री, परेशान मत हो, मैं हूँ ना। अरुणिमा मिश्री को तो सांत्वना दे रही थी पर उसके मन में कहीं ना कहीं शारदा जी की कही बातों ने हलचल मचा रखी थी, वो खुद उनकी बातों से बहुत ज्यादा आहत हुई थी। अरुणिमा मिश्री लेकर वापस महल की तरफ बढ़ रही थी। ऐसा हो सकता है कि पूरे सिंघल में कहीं हलचल हुई हो और इस बात की खबर आस्तिक को ना हो रही हो, और जब बात रानी साहिबा की है तो आस्तिक से ये बात कैसी छुपी रह सकती है। अरुणिमा पर शारदा जी ने हमला किया है ये बात आस्तिक को पता चल चुकी थी और वो बेचैनी से अरुणिमा के वापस आने का इंतजार कर रहा था। अस्पताल से जब उसे ये खबर मिली कि शारदा जी ने अरुणिमा का गला दबाने की कोशिश की है, तो एक पल के लिए आस्तिक डर गया था। उसके दिल में हजार तरीके के ख्याल आ गए थे। वो बस अरुणिमा को अपने सामने देखना चाहता था। उसने कई बार ड्राइवर को भी कॉल किया था, लेकिन क्योंकि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, इसीलिए उसने फोन रिसीव नहीं किया था।